भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम 8वें स्कंद से अध्याय 5, देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना, श्लोक क्रमांक 32। पादो महीयम स्वकृते वयस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। शब्द पादौ उनके चरण कमल, मही पृथ्वी, इयं यह स्वकृत उन्हीं के द्वारा उत्पन्न, एव निस्संदेह यस्य जिसका, चतुर्विधः चार प्रकार के जीवों का, यत्र जहां पर, ही निस्संदेह भूतसर्गः भौतिक सृष्टि, सह वह वै निस्संदेह महापुरुषः परम पुरुष, आत्मतंत्र आत्मनिर्भर आत्माराम, प्रसीदताम वे हम पर कृपालु हो, ब्रह्म महांतम महाविभूति असीम शक्ति से युक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, मही शब्द पांच भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित हैं। महत पदम पुण्य यशो मुरारे। महत तत्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में चार प्रकार के जीव हैं, जरायुज भ्रूण से उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, स्वेदज पसीने से उत्पन्न तथा उद्बीज बीज से उत्पन्न। जैसे कि वेदांत सूत्र से पुष्टि होती है, जन्माद्यस्य यतः, प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञः स्वराट्। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतः भगवान सबों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहां तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, भगवान के एक दूसरे ऐश्वर्य मात्र ही है। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतः भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं हैं। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्वरूप अर्थात वैराज मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहां पर देवतागण भगवान का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे कि भगवान सभी के स्तोत्र हैं और भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इसलिए भगवान उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो कुछ भक्तगण कहने लगे कि ये भौतिकवादी लोग कहते हैं कि हम कुछ नियम इत्यादि को नहीं मानते हैं, हम तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं जो चाहता हूं मैं कर सकता हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र हैं और तो प्रभु जी इंग्लिश में कहते हैं समटाइम्स लाइक डांसिंग डॉग्स दे डांस एंड सिंग वी आर इंडिपेंडेंट वी आर इंडिपेंडेंट। तो वो केवल इस तरह सोच सकते हैं और शायद गा सकते हैं नाच सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बट एट एनी मोमेंट दे विल बी किक्ड आउट, किसी भी क्षण माया उस व्यक्ति को लात मारकर भगा देगी वहां से। तो कौन स्वतंत्र है? तो प्रभु जी कहते हैं इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए जैसे हिटलर नेपोलियन गांधी, लेकिन हम देख सकते हैं कि अंत के समय उनकी क्या दशा हुई। हिटलर को हालांकि उसने इतने सारे लोगों की हत्या की लेकिन अंत में तो वो सोच रहा था कि वो कंट्रोलर है, स्वतंत्र है, स्वराट है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लोगों का अंत कर सकता हूं, मर्डर कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अंत में उसे घोड़े का मूत्र पीना पड़ा, ही टू ड्रिंक हॉर्सेस यूरिन। तो क्या वो स्वतंत्र था उस समय? वो नेपोलियन था, और हिटलर, हिटलर ने आत्महत्या की, तो कहां स्वतंत्रता? उसी प्रकार अनेक देशों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, उनकी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी मारे गए। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। वो मान सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन किसी भी क्षण वो स्वतंत्रता भगवान या माया छीन सकती है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यह जानना जरूरी है कि केवल एक ही व्यक्ति पूरी तरह से स्वराट है, वो है भगवान। कुछ हद तक हम स्वतंत्र हो सकते हैं, यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। तो हमारी जो स्वतंत्रता जो है वो बहुत सीमित है, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र केवल एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान। तो इस प्रकार दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति भगवान के नियमों से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं गाड़ी जैसे मैं चाहता हूं मैं गाड़ी चलाऊंगा यहां पर रोड पर, सोच सकता है, लेकिन फिर दंड बनना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रभा जी कहते हैं जो कैदी है जेल में वो भी सोच सकता है मैं स्वतंत्र हूं जेल में, क्या सुनता है? तो उसी प्रकार जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी स्वतंत्र हैं क्योंकि हम तो भगवान ही बन गए। तो प्रभुपाद जी का हमेशा प्रभुपाद जी चैलेंज करते थे, तो अगर भगवान हो तो फिर अगर टूटे गए तो डेंटिस्ट के पास क्यों जाना पड़ता है? स्वयं ठीक कर सकते हैं, क्यों डेंटिस्ट के पास? इसका मतलब डेंटिस्ट भगवान से श्रेष्ठ है? तो इस प्रकार बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि हम भगवान हैं। पौंड्रक ने भी सोचा था कि मैं भगवान हूं, जो असली भगवान है वो नकली है, मैं असली भगवान हूं। लेकिन भगवान श्रील प्रभुपाद पिछले तत्व में बताते हैं कि व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, लेकिन मृत्यु के समय हर एक व्यक्ति जान लेता है कि वास्तव में कौन स्वतंत्र है। भगवान सबको दिखाते हैं कौन स्वतंत्र है। तो वही भगवान जो पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वही भगवान जो पूरी तरह स्वराट है, वही भगवान कभी कभी अपनी स्वतंत्रता को किसी अन्य व्यक्तियों के अधीन या उस स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं और किसी अन्य व्यक्तियों के अधीन हो जाते हैं। हालांकि भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कभी कभी अपने भक्तों के अधीन स्वेच्छा से हो जाते हैं। तो आज हम थोड़ा यह डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं या किन अवस्थाओं में भगवान जो पूरी तरह से स्वराट हैं लेकिन फिर भी भक्तों के अधीन क्यों हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण बलराम। तो महाराज प्रताप बुद्ध की कहानी से हम देख सकते हैं कि कुछ सात फैक्टर्स हैं, सात कारण हैं कि क्यों भगवान भी जो पूरी तरह से स्वराट हैं क्यों अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जब सारंग भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष इस प्रस्थाना को रखते हैं कि हे भगवान, यहां पर एक राजा है जो बहुत ही आतुर है आपसे मिलने के लिए, कृपया करके उनको आपका दर्शन दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राजा, सन्यासी, इनकॉम्पैटिबल, साथ में नहीं आता, दोनों राजा और सन्यासी नहीं हो सकता। सारंग भट्टाचार्य कहते हैं कि हालांकि वो राजा है लेकिन भक्त है, साधारण राजा नहीं है। महाप्रभु कहते हैं जो भी है लेकिन पॉइंट क्या है, ये टाइटल है राजा, तो इसलिए अनक्वालिफाइड, नहीं मिल सकता हूं। और फिर सारंग भट्टाचार्य को डांटते हैं कि आप इस प्रकार की प्रस्तावना कैसे रख सकते हो, लोग क्या कहेंगे, अगर इस प्रकार तुम कहोगे तो मैं यहां से चला जाता हूं। सारंग भट्टाचार्य डर गए। तो सारंग भट्टाचार्य सोचने लगे क्या किया जाए, क्योंकि वैष्णव जो है वो हमेशा सोचते हैं किस प्रकार अन्य लोगों का उद्धार, अन्य लोगों को भगवान की कृपा किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसा हमेशा वैष्णव सोचता है। तो कुछ दिनों के बाद वहां पर रामानंद राय आए, तो रामानंद राय तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे आदेश दिया था कि इस सरकारी नौकरी को छोड़कर आपकी सेवा में पूरी तरह से लगे जगन्नाथपुरी में, तो इस बात को मैंने महाराज प्रताप रुद्र के समक्ष रखा, तो महाराज प्रताप रुद्र आपके नाम सुनते ही भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आप इस सरकारी नौकरी को छोड़कर पूरी तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना चाहते हो। मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूं, तो इसलिए मैं पूरी तरह से अनुमति देता हूं कि इस सरकारी नौकरी को छोड़कर आप श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हो और साथ साथ फुल सैलरी पेंशन के रूप में, बिना काम का फुल सैलरी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा देता है फुल टाइम जाने होने पर? तो रामानंद राय ये सब कुछ बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, और श्री चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय कहते हैं कि वास्तव में मैं देखता हूं कि जो प्रेम इस राजा का जो प्रेम है आपके प्रति वो मुझ में नहीं है। इस बात को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे रामानंद राय, आप तो परम भक्त हो, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने आप जैसे भक्त को प्रसन्न किए तो इसलिए जरूर भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस राजा पर अवश्य मिले। तो यह पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि भक्तों को प्रसन्न करना। जब तक हम भक्तों को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक भगवान की कृपा प्राप्त होना असंभव है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पर एक इंग्लिश सेइंग कोट करते हैं वहां पर, सर मी सर माय डॉग, तो खास करके जो पाश्चात्य देश के लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और जो भी वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस है उनके लिए, तो क्योंकि पाश्चात्य देश में कुत्तों को बहुत आदर सम्मान दिया जाता है, कुत्तों के लिए सब कुछ फैसिलिटीज होते हैं, कुत्तों के लिए ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल्स, फूड स्टोर्स, सब कुछ अलग कुत्तों के लिए, भाग्यशाली कुत्ते। तो अगर मालिक को प्रसन्न करना है तो अगर कुत्ता प्रसन्न होता है तो मालिक प्रसन्न होता है। तो उसी प्रकार प्रभा जी कहते हैं कि भगवान का यह पॉलिसी है कि जब तक हम भक्तों को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक हम डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र ने रामनंद राय को प्रसन्न किया तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुटोपि। और इसलिए आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्त है। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में रहकर भक्तों की सेवा करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक तात्पर्य श्री प्रभा जी कहते हैं कि भक्तों की सेवा जो है भगवान, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा है, उस सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों को इतना महत्व देते हैं। तो कभी कभी भगवान, डायरेक्ट भगवान की सेवा करना आसान हो जाता है क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते नहीं ऑल्टर पर, लेकिन भक्तों की सेवा में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी भक्तों की सेवा करना और भक्तों के संग में रहकर उस शुद्धिकरण को स्वीकार करना ये महत्वपूर्ण है। तो ये पहला पॉइंट है। आगे सारंग भट्टाचार्य फिर तुम्हारा प्रताप रुद्र सारंग भट्टाचार्य को बाद में पूछते हैं कि क्या आपने मेरी प्रस्तावना को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखा है। तो सारंग भट्टाचार्य कहते हैं हां मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान तो कहते कि नहीं हो सकता है, असंभव है। तो उस समय महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि वो मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं यह दृढ़ संकल्प लेता हूं कि यह जो शरीर है इस समय मैं त्याग देता हूं कि वह राज्य कि वह देह सब अकारण, यह राज्य यह देह सब अकारण है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसे पतित लोग जगह और मधाई जैसे पतित लोगों का उद्धार किया है, ऐसा लगता है कि मानो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत के सारे पतित लोगों का उद्धार करने आए हैं, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है महाराज प्रताप रुद्र। तो इसलिए आज मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि अगर मुझे महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो आज इसी दिन मैं इस देह को त्याग करता हूं। इस बात को सुनकर सारंग भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं यह दृढ़ संकल्प को देखकर अवश्य तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और प्रभुपाद जी लिखते हैं दिस डिटर्मिनेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द लॉर्ड्स मर्सी। तो यह दूसरा पॉइंट है दृढ़ता। हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के लोग इंद्रतुप्ति करने के लिए नाना प्रकार के तकलीफ उठाते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं उस इंद्रतुप्ति को प्राप्त करने के लिए, क्या क्या तपस्या नहीं करते हैं उस इंद्रतुप्ति को प्राप्त करने के लिए। क्यों? They are determined to get sense gratification at any cost. तो अगर जो भौतिकवादी लोग हैं वो इतने determined हैं, दृढ़ता है उनके पास, तो क्या भक्त लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो दृढ़ता को नहीं अपना सकते हैं? तो वही दृढ़ता की जरूरत है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट है जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अंततः महाराज प्रताप को प्राप्त हुई। तो आगे सांब भट्टाचार्य जब वो देखते हैं कि ये राजा जो है उनकी क्या दृढ़ता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, इस दृढ़ता को देखकर सांब भट्टाचार्य प्रसन्न होकर मार्ग दिखाते हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं फिर उनके आशीर्वाद से हम उस मार्ग को या उस पद्धति को हम जान सकते हैं जिसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो सांब भट्टाचार्य बताते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में वहां पर आराम करेंगे, वहां तुम अपने राजा के वस्त्र को त्याग कर एक भिखारी के वस्त्र को धारण करके वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो और साथ साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से श्लोक उच्चारण करो और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार सांब भट्टाचार्य जो महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे वो उनको मार्ग दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा पॉइंट है वो है गुरु को प्रसन्न करना। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येति कथिते अर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। तो गुरु को प्रसन्न करना ये अत्यंत आवश्यक है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और तभी गुरु की कृपा से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, नहीं तो हम अज्ञान में रह जाएंगे। हमें यह पता नहीं होगा कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो गुरु वो ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, गुरु वो ज्ञान देते हैं जिसे हमें पता चलता है कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो ये तीसरा पॉइंट है कि गुरु को प्रसन्न करना, गुरु की कृपा प्राप्त करना। तो हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं केवल उस दृढ़ता से, भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ता से ही हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। अन्य कोई और चीज नहीं है गुरु को प्रसन्न करने के लिए। हम गुरु के सामने बहुत दिखावा कर सकते हैं। कभी कभी भक्तगण जब गुरु आते हैं तो बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन जो वास्तविक दृढ़ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का दिखावा नहीं है। तो गुरु जानते हैं कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन वास्तव में प्रामाणिक है, सिंसियर है। तो अगर वास्तव में वो दृढ़ता है, वो लवलियम है, जिस प्रकार जो चातक पक्षी हैं शुद्ध पानी को, शुद्ध बारिश के पानी को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है, केवल वही पानी और कुछ नहीं, तो चातक पक्षी जो है वो मरने के लिए तैयार है लेकिन किसी और पानी को स्वीकार नहीं करता है। तो उसी प्रकार जब भक्तगण उस दृढ़ता के साथ भक्ति को अपनाते हैं केवल भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, जीवन में और किसी लक्ष्य को नहीं मानते हैं, केवल एक ही लक्ष्य है और वो है भगवान की कृपा किस प्रकार प्राप्त किया जाए, जब उस रुद्रा के साथ जब भक्तगण अपनी सेवा करते हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तभी भगवान और गुरु और भगवान प्रसन्न होकर फिर वो मार्ग दिखाते हैं जिससे शिष्य या भक्तगण भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो श्याम भट्टाचार्य जब वो देखते हैं कि ऐसे लगता है कि राजा तो अभी भिखारी बनने वाले हैं सब कुछ त्याग कर, तो सभी भक्तों का मीटिंग बुलाते हैं। तो सभी वैष्णवगण आ जाते हैं और उस इष्टागोष्ठी का विषय क्या है, महाराज प्रतापरुद्र को किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो वास्तव में जो भी इष्टागोष्ठी होती है सबका केंद्र वही होना चाहिए, अंततः किस प्रकार भगवान की कृपा को किस प्रकार आकर्षित किया जाए। मीटिंग किसके लिए, वही टॉपिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें कुछ हो सकती है लेकिन अंततः उद्देश्य वही होनी चाहिए, किस प्रकार भगवान की कृपा को आकर्षित किया जाए। तो श्याम भट्टाचार्य ने सब भक्तों के सामने इस परिस्थिति को रखा और उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो फिर सभी भक्तों ने सोचा कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जाएंगे लेकिन हम राजा के बारे में डायरेक्टली नहीं बताएंगे, हम केवल राजा का गुणगान करेंगे, उनके जो सद्गुण है उनका गुणगान करेंगे और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आकर्षित होंगे। तो सभी भक्त नित्यानंद प्रभु के साथ, सभी भक्त जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास और महाप्रभु के सामने चुपचाप खड़े हो जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं ऐसा लगता है कि आप लोग आए कुछ बोलने के लिए, चुप क्यों हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम डर रहे हैं बोलने के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं जो भी हो बताओ क्या बात है। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि एक राजा है और वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर आपका दर्शन प्राप्त न हो तो वो राज को त्याग कर एक भिक्षुक बनने के लिए तैयार है, द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार है। महाप्रभु कहते हैं असंभव, लोग क्या कहेंगे और यहां पर ये जो दामोदर पंडित है वो तो डांटेंगे। अगर दामोदर पंडित परमिशन दे दे तो मैं स्वीकार करता हूं राजा को मिलने के लिए। तो यह सुनकर दामोदर पंडित कहने लगते हैं हे भगवान आप तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मैं कौन हूं आपको बताने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप राजा को मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलेंगे और ऐसे लगता है कि आप मिलने ही वाले हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं नहीं, सन्यासी का चरित्र तो लोग माइक्रोस्कोप लेंस लेकर देखते हैं, सन्यासी रा अल्पचिद्र सर्वलोक गाय। ठीक है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है, कम से कम राजा को सांत्वना देने के लिए आपका जो ऊपर का वस्त्र है वो वस्त्र दे दो। महाप्रभु कहते ठीक है अगर आप चाहते हैं तो ले लो। तो फिर श्याम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र लेकर राजा प्रताप रुद्र को देते हैं। अभी कितने पॉइंट्स हुए, हाँ तीन हो गए चार हो गए, तो अभी चौथा पॉइंट है। तो जब महाराज प्रताप रुद्र को यह वस्त्र प्राप्त होता है। तो राजा यह नहीं कहता है कि अरे ये क्या है, मैंने तो भगवान का दर्शन मांगा, ये वस्त्र से क्या हो, क्या होगा, ये वस्त्र से बेकार है, कैसे लोग तुम लोग कुछ काम का नहीं है, ये वस्त्र लाए। राजा उस वस्त्र को लेकर स्वयं भगवान के समान अपने ऑल्टर पर रखकर उस वस्त्र का पूजा करने लगे, क्योंकि जो तदीय है, जो भगवान से अभिन्न है, उस चेतना के साथ वो पूजा करने लगे। तो चौथा पॉइंट है कृतज्ञता। तो राजा कृतज्ञ थे, ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्सी दैट फ्लोड हिज वे। तो राजा कृतज्ञ थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक वस्त्र मुझे प्राप्त हुआ है, ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान का तदीय है। यह सोच समझ कर राजा प्रताप रुद्र उस वस्त्र का पूजा करने लगे। तो इस प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहना ये अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि एक भक्त कह रहे थे, इफ वन इज नॉट ग्रेटफुल वन इज अ ग्रेट फूल। वह मूर्खता है अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं भगवान और भक्तों के प्रति, अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं जो भी हमें प्राप्त होता है उसके प्रति, अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो भगवान उन्हीं चीजों को छीन लेते हैं। तो जो भी हमें यह भक्ति में सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, अगर हम उससे हम कृतज्ञ नहीं हैं, तो कभी भी भक्त लोग सोचते हैं कि हमें ये सेवा क्यों मिला है, ये डीटी बैकअप सेवा कौन देखता है इसको, ये तो बैकग्राउंड में है, बैकअप कौन देखता है इसको। मुझे तो कुछ डिपार्टमेंट का हेड बनाना चाहिए, मुझे ये पोस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार अगर हम सोचेंगे तो हम डिमांड करेंगे भगवान से, भगवान कहेंगे नो बैकअप, ओनली बैकआउट। तो जो भी सेवा हमें प्राप्त होता है, हमें सोचना चाहिए कि कितने जन्मों के बाद, अनगिनत जन्मों के बाद हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वराट है, उनकी अहेतु की कृपा से यह सेवा प्राप्त हो रही है। लोग लालायित होते हैं प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट की सेवा करने के लिए, यहां पर परम पुरुषोत्तम भगवान है जो अनेक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं अगर घर में 3 बेटा है, जो बेटा कुछ काम का नहीं है उसको मंदिर में भेजते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और देश में किसका नौकरी कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नौकरी है जो भी है, लेकिन वो नहीं जानते कि जो भगवान है वो तो सब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से ऊपर है। तो केवल जो भाग्यशाली लोग होते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, वास्तव में केवल ऐसे भाग्यवान जीव को भगवान की सेवा प्राप्त होती है। तो यह सेवा प्राप्त होकर हम भगवान की सेवा और भगवान का नाम जप करने का अवसर, भक्तों का संग, तो इसको हमें तो कृपा का भाड़ है, भाड़ है यहां पर। तो फिर भी अगर हम सोचते रहेंगे अरे भगवान तो लगता है इतने कृपालु नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम कृतज्ञ नहीं हैं जो हमें प्राप्त हुआ है। और अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो वो जो फैसिलिटी है, वो जो सुविधाएं हैं इस भक्ति को करने के लिए, भगवान उसको छीन लेंगे। लेकिन यहां पर महाराज प्रताप रुद्र पूरी तरह से कृतज्ञ थे उस वस्त्र को प्राप्त करके। और आगे इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और कुछ कृपा दिखाते हैं। जब जो कृपा प्राप्त होता है उसके लिए अगर हम कृतज्ञ हैं तो फिर कुछ और कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आगे फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से जब भक्त लोग गए भगवान से विनती करने लगे, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है मैं राजा से नहीं मिलूंगा, लेकिन जो राजा का जो बेटा है उससे मिलता हूं। तो जो राजकुमार थे, राजकुमार मिलने गए भगवान को, और राजकुमार बहुत ही सुंदर थे, और उनको देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं श्री कृष्ण का स्मरण हुआ, और स्मरण करते हुए उस राजकुमार को आलिंगन किए, और आलिंगन करते करते ही ये राजकुमार के शरीर में सभी प्रकार के अश्व विकार प्रकट हुए, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस राजकुमार पर शुद्ध कृष्ण प्रेम बरसाए। और फिर हर दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस राजकुमार को मिलने लगे। और जब राजकुमार वापस घर लौटे और अपने पिता महाराज प्रताप रुद्र से मिले, तो महाराज प्रताप रुद्र को ऐसे लगा कि स्वयं वो भगवान को मिले, अपने पुत्र को देखकर, अपने पुत्र में कृष्ण प्रेम के लक्षण को देखकर उन्हें लगा कि मानो स्वयं को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। और फिर से महाराज प्रताप रुद्र अत्यंत कृतज्ञ थे इसके लिए। आगे जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सात ग्रुप्स में नृत्य कर रहे थे, और एक ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु सातों ग्रुप्स में विस्तार करके नृत्य कर रहे थे। और भगवान के का यह ऐश्वर्य जो है कुछ ही लोग देख पाए, जो भगवान के अंतरंग पार्षद थे केवल वो लोग देख पाए, और उनमें से एक था महाराज प्रताप रुद्र। तो यह है अहैतुकी कृपा। तो हालांकि भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता है कृपा देने के लिए, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही आतुर है, उत्सुक है उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, तब भगवान अहैतुकी कृपा देते हैं। तो यह है पांचवा फैक्टर, भगवान की अहैतुकी कृपा। जब तक ये अहितों की कृपा न हो भक्तों का और भगवान का, तब तक भक्ति में आगे बढ़ना यह संभव नहीं है। तो अहितों की कृपा है क्योंकि हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो प्रभा जी उसी मॉर्निंग वॉक पर प्रभा जी कहते हैं कि देखो यहां पर ये कोहरा है, फॉग है, मिस्ट है, क्या तुम आदेश दे सकते हो इसको जाओ यहां से? हाँ, इस फॉग की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नहीं, जब तक सूर्योदय नहीं होता ये फॉग नहीं जा सकता है। क्या सूर्य को आदेश दे सकते हैं? नहीं। तो कहां है स्वतंत्रता तुम्हारी? तुम तो अधीन हो। तो इस प्रकार भगवान भी सूर्य के समान हैं, और जब भगवान चाहते हैं भगवान कृपा प्रदान करते हैं। यह है अहैतुकी कृपा। तो वही अहितु की कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस राजा को दिखाया, और उस रथ यात्रा शुरू होने से पहले महाराज प्रताप रुद्र उस रथ के सामने बहुत ही विनम्र भाव से उस रथ के सामने झाड़ू मारने लगे, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस दृश्य को देख लिया। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने देखा कि ये राजा जो है हालांकि इतने बड़े पोस्ट होने पर भी इस प्रकार का विनम्र सेवा कर रहा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा राजा है लेकिन सभी प्रकार के सद्गुण हैं, इन गुणों के वजह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूरी तरह से स्वराट है लेकिन फिर भी उनका हृदय पिघल गया। और यह है छठा पॉइंट, नम्रता और सद्गुण। और जब रथ यात्रा के समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में वहां पर लेट गए विश्राम करने के लिए, महाराज प्रताप रुद्र वहां पर गए अपने सब राजा के वस्त्र को त्याग कर एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक भिक्षुक की तरह वहां पर जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दबाने लगे। और दबाते समय श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के श्लोक का उच्चारण करने लगे और वो सेवा करने से पहले महाराज प्रताप रुद्र सबसे पहले सभी वैष्णव का आशीर्वाद को प्राप्त करके उस सेवा करने लगते हैं। ऐसा नहीं मैं राजा हूं, उस भावना से नहीं गए, सभी वैष्णवों को दंडवत करते हुए उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद महाराज प्रताप रुद्र उस सेवा करने लगे। क्योंकि जब तक वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं है हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं या उस सेवा में हम सफल नहीं हो सकते हैं जब तक वैष्णवों की कृपा न हो। तो इसलिए ध्रुव महाराज भी जब वैकुंठ धाम जा रहे थे, हालांकि वो तो पूरी सफलता को प्राप्त किए थे लेकिन फिर भी उस समय भी जो वहां पर भक्तगण ऋषिगण वहां पर उपस्थित थे जो अभी तक भौतिक संसार में ही थे, और ध्रुव महाराज तो जा रहे थे लेकिन फिर भी उस समय भी ध्रुव महाराज सबसे पहले वहां पर उपस्थित भक्तगणों का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर उस वैकुंठ विमान में विराजमान होते हैं। क्या जरूरत थी, वो तो जा रहे हैं अभी भगवत नाम जा रहे, ये लोग तो इधर ही है, उनके आशीर्वाद देना चाहिए ना, देना चाहिए। लेकिन फिर भी एक आदेश प्रस्तुत करने के लिए वहां पर भक्तों से आशीर्वाद लेकर वैकुंठ जा रहे हैं। तो यहां पर भी महाराज प्रताप रुद्र सबसे पहले सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेने के बाद फिर वो सेवा करने लगते हैं। और जैसे ही वो श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, यह श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि अपने बाह्य चेतना में आकर भूरिदा भूरिदा तुम इतने दयाल हो कृपाल हो, कौन हो तुम, यह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उस राजा को आलिंगन के बताइए इतने कृपालु व्यक्ति तुम कौन हो। तब राजा ऐसा नहीं कहता है, अब जानते नहीं मैं तो राजा प्रताप रुद्र हूं। महाराज प्रताप रुद्र कहता है मैं तो केवल आपके दासों के दास हूं और मेरा एकमात्र लक्ष्य है जीवन में आपके दासों के दास बना रहना, ये एकमात्र लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन करते हुए शुद्ध प्रेम प्रदान किए और वहां पर उपस्थित सभी भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए यह देखकर कि अंततः महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो जो सातवां फैक्टर है वो है सेवा भाव, नम्र सेवा भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और अपनी कृपा प्रदान किए। तो इस प्रकार हालांकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो बाध्य नहीं है किसी पर कृपा प्रदान करने के लिए, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं कि कोई जीव उस कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आतुर है, लौल्यम है, तब जो पूरी तरह से जो स्वतंत्र भगवान है वो उस कृपा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो भी स्वेच्छा से। तो इसलिए भगवान विष्णु नारायण दुर्वास मुनि को कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही द्विज। कहते हैं कि मैं तो मेरे भक्तों के अधीन हूं, मैं तो अस्वतंत्र हूं। हालांकि सभी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान पूरी तरह स्वराट है, स्वतंत्र है, लेकिन स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं अस्वतंत्र हूं। साधु भी हृदय ग्रस्तो, जो साधुगण है, जो पूरी तरह से शुद्ध है, मेरा हृदय जो है वो खींच लेते हैं। साधु भी हृदय ग्रस्तो भक्तेर भक्त जनप्रिय, जो वास्तव में भक्तों के भक्त हैं उनका मैं प्रिय बन जाता हूं। तो इस प्रकार जो पूरी तरह से स्वतंत्र भगवान है, जो स्वराट है, अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं और अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, मायावादीज वॉन्ट टू बिकम गॉड बट द डिवोटीज कैन बिकम ग्रेटर देन गॉड। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम की जय, समवेद गौड़ भक्त वृंद की जय, नदाय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।